जय माँ। धर्म शब्द से जो आमतौर पर मनुष्य के मन में एक चित्र उभरता है वो है, अगर इंग्लिश में एक वर्ड शब्द हम लोग प्रयोग में लाएं तो वो है रिलीजन। रिलीजन से हमारे मन में जो भाव उठता है वो है कर्मकांड, बाहर से कुछ चीज़ें करना। बाहर से जैसे कोई टोपी लगाता है तो वो कौन है, पगड़ी पहनता है तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। वास्तव में अगर हम इसको थोड़ी सी भी ठहर करके देखें तो लगता है ये तो धर्म की वास्तव में ग्लानी है, धर्मस्य ग्लानी। ये तो उस समय की बात है जब धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो खो गया है और वो गिरता 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 वास्तव में इस रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है कि कोई भी किसी को कालनेमी बनकर मूर्ख बना सकता है। यानी हम केवल अपने कपड़े पहनकर, एक भाषा बोलकर, हाथ में कोई किताब पढ़कर किसी को मूर्ख बना सकते हैं। तो वो अपनी अपनी मर्जी, लेकिन वास्तव में धर्म का क्या स्वरूप है इसको अगर हम अंग्रेजी, ये इसलिए आवश्यक है इंग्लिश वर्ड इसके साथ जुड़ा होना। इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। ये आता है इसका जो रूट शब्द है, बीज है, वो है ध्र, जो धारण करता है। तो इसमें कहीं ना भगवान की बात हो रही है ना किसी कर्मकांड की बात हो रही है। ध्र, धूरी, धरती, ये सारे उसी रूट से निकलते हैं। वह जो हमें धारण करता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो एक इस सृष्टि का आधार है। आधार है भी कि है कि नहीं है, तो वो जो आधार है इस सृष्टि का उसको कहा गया एक धर्म का, वहां से ध्र धारण करता है। दूसरा उससे ही निकल करके आता है कि हमें क्या धारण करना चाहिए। तो हमारा, हमारी उससे हम किस प्रकार से जुड़े रहें, या हमारे लिए उसको कहा जाए कि कुछ नियम। अब इसको बड़े सरल ढंग से हम ऐसे समझें कि आप चाहें कि हम हवा में उड़े, हम नहीं उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो हमको खींच लेगा और हमारी हड्डी टूट जाएगी। तो सृष्टि के अंदर एक अपने, जिसको कहते हैं नेचर्स लॉस, प्रकृति के अंदर कुछ नियम हैं और उस नियम, वो हमने नहीं बनाए, वो प्रकृति के अंदर हैं, उसके अनुसार हमें जीवन जीना पड़ता है। यानी एक नियम है। अब यहाँ पर धर्म का जो अर्थ है वो रिलीजन नहीं, बल्कि जो नियम है, जो व्यापक, जिनको विधान हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो जिनके अनुसार अगर हम जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन सुंदर सुचारू रूप से चलता है। और यदि हम उन नियमों की अवहेलना करते हैं तो अब देखिए उसमें जस्टिस का भी अपने आप वो समावेश हो जाता है। लेकिन यहाँ जस्टिस का अर्थ बहुत अलग है। अगर तुम नियम के अनुसार जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अगर आप भोजन अनियमित रूप से खा रहे हो तो आपको अपच हो जाएगा। तो अपने आप इसके अंदर वो पुरस्कार और दंड का विधान नहीं है। विधान ये है कि अगर आप सृष्टि के कुछ नियम हैं आधारभूत, उनके अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन अधिकतर हम ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलेगा। अब बात यह होती है कि मनुष्य केवल भौतिक सत्ता पे तो जीवन में नहीं जीता है, उस तो मनोवैज्ञानिक सत्ता भी है, उसके अंदर प्राण है और मनोविज्ञान, उसके मन के अंदर अनेकों गतियां हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं। तो अब प्रश्न उठता है क्या इनके भी कोई नियम हैं या इनको हम जैसे चाहें चलने दें। जैसे अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का तो अब भौतिक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण, ये एक नियम है, या आप आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ये एक नियम है। हालांकि हमेशा ये भी संभव है कि आप कुछ प्रिकॉशन लेके अगर आग में हाथ डालो तो ना जले। तो क्या ऐसे नियम हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर भी लागू होते हैं? तो ये क्षेत्र सीधा धर्म का आ जाता है कि यहां कहा जाता है कि हाँ ऐसे नियम हैं सृष्टि में और उन नियमों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो जीवन हमारा सुंदर चलता है, स्वस्थ चलता है, सुचारू रूप से चलता है। और जब हम उन नियमों की अवहेलना करते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर की बात हो रही है, तो फिर हमारा जीवन टूटता है, बिखरता है, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन मन की भूमि तो सब कुछ नहीं है, तो इसके परे और भी एक प्रश्न उठता है, क्या इसकी भी गहराई में कोई चीज़ है जहाँ से ये सारे नियम निकले और क्यों निकले हैं? ये मूलभूत प्रश्न है कि ये करो वो करो, ऐसे अच्छे विचार रखो, अच्छी भावनाएं रखो, जिसको भी हम उस पर हम लोग आएंगे दो मिनट के बाद, लेकिन क्या इसके भी पीछे कोई सत्य है? तो यहाँ से जो धर्म का गूढ़तम सत्य वहाँ प्रकट होता है कि हाँ ये सृष्टि केवल एक दृष्टा या साक्षी सत्य की सृष्टि नहीं है, क्योंकि उसमें समस्या ये हो जाती कि अगर जो सृष्टि का मूल है ईश्वर है, ईश्वर शब्द से तो अपने आप आ जाता है कि वो केवल साक्षी नहीं है, ईश है, लॉर्ड है, लेकिन एक हम लोग सृष्टि के मूल के बारे में एक अवधारणा ये भी है कि वो ब्रह्म की तरह या आत्मा जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा नालिप्यते लोक दुखेन बाह्य। तो एक ये समझ है इसके बारे में, ये नहीं कि ये गलत है सही है, ये एक स्टेज है और इसकी अपनी आवश्यकता है। एक आधारभूत शिला ये है कि इस सृष्टि के पीछे एक अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो शिवोहम 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 की एक आधारभूत सत्ता है, लेकिन उसका संसार और सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में अगर हम इसको मानेंगे तो हमारा धर्म का कर्म का औचित्य समाप्त हो जाता है। और एक पूरी विचारधारा है भारत में भी रही है कि वास्तव में औचित्य नहीं है, ये इल्यूजन है। तो औचित्य क्या हो गया, जो चीज तुमको इस इल्यूजन से बाहर निकाल दे, तो यानी पूरा का पूरा वो जो स्ट्रक्चर है, विधि का विधान है, ये सब कोलैप्स हो जाता है। लेकिन इसी में एक दूसरी विचारधारा भी रही है भारतवर्ष के अंदर, जो मुखर रूप से गीता में श्रीमद भगवद गीता में आती है कि नहीं, ब्रह्म ही लास्ट वर्ड नहीं है सृष्टि का, अक्षर ब्रह्म। हालांकि गीता कहती है एक श्लोक में अक्षर ब्रह्म परमम, तो वो जो शर भाव है उससे हायर है, डीपर है, लेकिन उसके परे कौन है, उसके परे है पुरुषोत्तम। यानी देर इज एन ईश, ईश जो शक्ति है, सक्रिय पावर है, यानी आधारभूत सत्ता जो इस सृष्टि की है वो केवल एक निष्क्रिय, एक साक्षी नहीं है, बल्कि वो ईश है। ईश यानी लॉर्ड, और ईश का अर्थ है कि वो हर अवस्था में ईश है, वरना वो ईश नहीं है। ये कंडीशनड लॉर्डशिप नहीं होती है कि भाई सॉरी टू से मेरे हाथ में ये है, इसके आगे मेरे हाथ में नहीं है। तो ईश का अर्थ ये है, इसको शेरविंद सावित्री में बड़े सुंदर से इसको प्रकट करते हैं, और ये आवश्यक है क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस ईश से काट देते हैं इस विधान को, और हम उसको एक क्लोज्ड सर्किल में घुमाते हैं जिसमें हम कहते हैं जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तुमको फल मिल रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हो वैसे फल मिल रहे हैं। लेकिन शेरविंद कहते हैं सावित्री में, द वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ आवर लाइव्स, ही वर्क्स थ्रू द हार्ड ब्रेथ ऑफ बैटल एंड टॉयल, व्हेन नथिंग वी कैन सी बट ड्रिफ्ट एंड बेल, ए माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल। एक लाइन और थी उसमें, ही वर्क्स थ्रू आवर सिंस आवर सॉरोज एंड आवर टीयर्स। तो अब ये इसका सबसे गूढ़तम ये है कि ये संसार हमारे रिसोर्सेस पे छोड़ नहीं दिया गया है, यानी ये विधान केवल भौतिक स्तर पे नहीं है, ये विधान हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी, और इस सब के पीछे आध्यात्मिक स्तर, वहां पर ये विधान लागू होता है। तो इस विधान के पीछे लॉजिक क्या है? अब अगर आप ह्यूमन जस्टिस की बात करें तो उसकी लॉजिक होती है पनिशमेंट, उससे क्या होता है, आपको रिवेंज का भाव कि भाई हमने इसको, इसने मुझे धोखा दिया था, चीटिंग किया था, इसको मैं पनिश कर रहा हूं। तो क्या हुआ, आपके अंदर कौन सी मनोवृत्ति को सेटिस्फैक्शन मिला, संतोष मिला, वो जो बदला लेना चाहती है। अब देखा जाए तो इट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग। तो लेकिन ये एक विधान रहा है एक समय में, इसी को लोग हाईएस्ट समझते थे। उसके बाद अब एक नई उसी में सोच आई है, वो सोच क्या है कि नहीं, रिफॉर्म होना चाहिए, हमारे जो जेल है वो पनिशमेंट के लिए नहीं, रिफॉर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिमिनल बाहर आएगा और उसकी मनोवृत्ति में बदलाव नहीं हुआ है तो वो तो यहाँ आके फिर और भी ज़्यादा कहर मचाएगा। तो अब हम देखते हैं कि धर्म के अंदर ये दो प्रकार की धारणाएँ प्रचलित हैं। एक ये है कि धर्म जो है वो पुण्य और पाप, पुरस्कार और दंड, इसका विधान है। आप सही चीज करोगे तो आपके जीवन में पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार भी क्या मिलेगा वो तो कहने की बात ही नहीं है, आपका घर बन जाएगा, आप खूब पैसे आ जाएंगे, मानो ये कोई बड़ा पुरस्कार है। देखा जाए तो जिनके पास जितने, किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि जेब खाली थी मगर दिल था भरा, दिल हुआ खाली भरी है जेब जब से, और ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि जितने लोगों के पास जितना धन आता है उतना हृदय खाली होता जाता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है पर मोर ऑर लेस कहीं ना कहीं प्रेम घटता जाता है, वृत्ति आपको देने की एक सेकंड का डिवीजन, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जितने सहजता से पौंडीचेरी की बात कर रहा हूं, जो नरियल बेचती है वो लेडी, वो 50 के में अगर आप बोलोगे 40 में दे दो तो आराम से दे देगी। यही चीज में अगर शोरूम में जाऊंगा और वहां बोलूंगा कि ये जो आपने ब्रांडेड कपड़ा 10,000 की पैंट रखी है, इसको आप क्या 9,500 करेंगे, तो नहीं देगा। वो खेल खेलेगा कि इसमें आपका इतना 10% डिस्काउंट है, बट नथिंग। अब ये धर्म है या अधर्म है, प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि लीगैलिटीज में अगर आप जाएंगे तो पहले तो हमको एक चीज समझ जानी चाहिए, धर्म की जो बात हो रही है ये एक इनर लॉ है। कोई इनर, कोई आंतरिक भी इसके बारे में विधान है? बाहर से तो उसने लूट लिया आपको और आप खुशी खुशी लूट के आए, लेकिन क्या अंदर में कोई विधान है जो चल रहा है साथ साथ, जिसको शायद वो नहीं पहचानता, शायद हम नहीं जानते, लेकिन कोई विधान है क्या? तो यहां पर धर्म हमें बताता है कि एक विधान है। और इसको शेरविंद एक बड़ी सुंदर कहानी के साथ समझाते हैं, बहुत जगह उन्होंने बहुत तरह से समझाया है, और कहानी का नाम है स्वप्न। तो उसमें हरिमोहन है जो बाहर से रोज भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, और एक दिन रोज कंप्लेन भी करते हैं कि आप कैसे हो केष्टा, देख रहे हो मेरी हालत, रोज पूजा करता हूं, मेरी हालत देखो, हर रोज कल खाना मिलेगा कि नहीं इसकी मुझे पता नहीं है क्या होगा, सामने 3 कोड़ी सील का मकान देखो, क्या मकान है क्या नहीं है, तो ना पूजा करता है ना कुछ करता है, मस्त है, मजे ले रहा है। तो अचानक एक दिन कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, उसके मन में यह भाव आता है कि तुम मुझे मिल गए ना तो पीटूंगा मैं। तो कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए भगवान के बारे में ऐसा सोचना सही है या गलत, लेकिन अब कृष्ण जी क्या कहते हैं, श्री अरविंद की कहानी है। कहते अरे मैं आ गया, कहते अरे रे सॉरी सॉरी क्षमा कीजिएगा, कहते नहीं तूने पहली बार मुझे अपना मान के ट्रीट किया जैसे मैं सच में हूं, इसलिए मैं आ गया, ले पीट मुझे, हाथ ये रे। तो क्षमा मांगते, कहते नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, कहते जो भी मतलब था चल मैं तुझे 3 कोड़ी सील के घर ले चलता हूं। तो वो 3 कोड़ी सील के घर ले जाते हैं। पहले वो कहता है वो पिट जाएंगे हम लोग, कहते हैं नहीं नहीं चल मेरे पास सारे जादू के रास्ते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं 3 कोड़ी सील एक बड़े डनलप के बिस्तर पे सोया हुआ है। अब वो बोलता है हरिमोहन, देखा केष्टा केशव, ये देखो इसको क्या मजे में सोया है, मुझे तो रोज हवा गर्मी के दिन में आपको क्या मालूम है क्या तकलीफ होती है। कहते रुक जा तूने इसकी तकलीफ अभी देखी नहीं है। और फिर वो एक अपनी योग माया द्वारा उसके अंदर में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ वो देखता है कि नरक अग्नि जल रही है, वो छटपटा रहा है, बिस्तर पे सोया छटपटा रहा है, चिंताओं से ग्रसित है कि मेरी वाइफ ना जाने कब भाग जाएगी और मेरे बच्चा मुझे छोड़ देगा, इन्हीं प्रकार की चिंताओं से वो ग्रसित है। और वो कहते हैं मुझे बाहर निकालो, ये तो मेरे घर की मैं ताप झेल लूँगा, इसमें से बाहर निकालो। तो बाहर निकलते हैं और फिर वो लंबी कहानी है, पर इसके सारांश में अगर हम जाएं तो धर्म का विधान जो है वो ये है कि अगर हम अपने जीवन को अलाइन करते हैं धर्म के साथ, अब वो किसी धर्म के साथ का क्या मतलब हुआ तो वह एक क्षण में आते हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः ही सुख शांति समृद्धि आंतरिक समृद्धि सब प्राप्त होता है। और जब हम इसको अलाइन नहीं करते हैं, अधर्म का मार्ग चुनते हैं, तो हो सकता है कि हमें बाहर से बहुत कुछ मिले लेकिन अंदर से हम विपन्नता की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब अलाइन करने का अर्थ क्या हुआ? अब यहां पे 3 लेयर्स आते हैं धर्म के। एक है बाहर से बता दिया हम लोगों को कि ये काम करोगे तो ये पूजा करोगे, ये व्रत करोगे, ये उपवास करोगे। ये चीजें वास्तव में धर्म का कोर भी नहीं है और ये बदलती रहती हैं। जैसे जी अब देखिए आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व भी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 60-70 वर्ष हुए होंगे, एक देवी अचानक प्रकट हुई थी भारत में, माँ संतोषी, जय संतोषी माँ। पिक्चर लोग पिक्चर में पैसे फेंकते थे और जैसी संतोषी माँ आई उनका व्रत रखना सोमवार शुक्रवार कि भाई व्रत करेंगे तो विवाह हो जाएगा, और लोग समझते थे कि भाई इस दिन अगर आपने व्रत तोड़ दिया तो पाप है। तो अब ये धर्म का एक बहुत ही, और वैसे ही वो समाप्त भी हो गया, अब कोई नहीं पूछता है वो पैसे कहाँ गए क्या हुआ, नोबडी नोज। तो धर्म का ये जो बाहरी रूप है ये सतत बदलता रहता है। हमको एक चीज मान समझ लेनी चाहिए स्पष्ट रूप से कि बाहर से जिसको हम कहते हैं कि ये नियम है, ये हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी, ये कोई आवश्यक नहीं कि ये भविष्य में हो। अब इसके कई उदाहरण मैं ले सकता हूँ। एक उदाहरण जो शायद सामयिक होगा, आजकल हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियाँ अपने मर्जी से विवाह करते हैं। लोग कहते हैं ये धर्म सम्मत नहीं है। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह है। अब आप तो ये कह दोगे कि श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण धर्म सम्मत नहीं है, तब किस हद तक हम जा सकते हैं? तो बाहर की जो व्यवस्था है धर्म की, सबसे बाहरी, ये बदलती रहती है, ये उसका मूल नहीं है, उसका आधार नहीं है। प्रत्येक समाज में, कालखंड में ये इवॉल्व करती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। जब हम छोटे थे तो हम माता पिता के पांव छूते थे और प्रणाम करते थे। आज जो बच्चे हैं वो माता पिता के गले लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये। अब ये क्या वो धर्म से विमुख हो रहे हैं? नहीं, वो अंतरंग हो गए हैं, वो सखा हो गए हैं आपके। आपको वह अब बल्कि वो आपके मित्र जैसे हो गए हैं, आपसे शेयर करते हैं चीज़ें। तो एक बाहरी रूप है धर्म का, जिसको हम बाहरी क्रियाकलाप, और इसके बहुत उदाहरण कालनेमी की मैंने बात की थी कि हो सकता है कोई व्यक्ति, कई बार आप देखें कि रोज पूजा कर रहा है, पूजा क्यों कर रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक व्यक्ति गया मंदिर में पूजा करने, क्या कि मैं पूजा करके मैं सक्सेसफुल हूँ एज ए जो डकैती करने वाला हूँ। अब बताइए ये उचित है कि अनुचित है? इस पर विवेचना हो सकती है। हमारे ये बड़े फेमस वो जो थे चंदन के स्मगलर थे वीरप्पन, ये पूजा करके जाते थे, मर्डर भी करते थे पूजा करके। तो अब उसमें भी ये आता है कि वीरप्पन के लिए क्या उचित है और जो व्यक्ति ऑलरेडी एक इवॉल्व व्यक्ति है उसके लिए क्या उचित है। यानी ये बाहर की जो चीज़ें ये बदलती है, ये सामयिक होती हैं। इनको स्थाई समझ लेना, उनको जबरदस्ती स्थाई बनाने की चेष्टा करना, तिलक त्रिपुंड से पहचान कर लेना धर्म की, टोपी से पहचान कर लेना कि भाई तुम टोपी वाले हो या तिलक वाले हो, इससे अधिक मूर्खता नहीं हो सकती। ये चीज़ें केवल एक समय इनकी आवश्यकता थी, खासकर जब ये बहुत कुछ हो रहा था विवाद, तो उस समय भाई तुम्हारी पहचान जनेऊ है कि टोपी है कि त्रिपुंड है, दिस इज ओके, एक समय इसकी इसका औचित्य था। लेकिन आज यदि हम, और आज भी देखिए मूर्खता होती है कि हम कोई गेरुआ वस्त्र पहना है तो हम इंस्टिंक्टिवली कहते हैं प्रणाम। अब वो पता नहीं गेरुए के अंदर क्या चल रहा है उसका। गेरुआ वस्त्र देख के या सफेद वस्त्र देख के, इसीलिए माने इस चीज को बिल्कुल निकाल दिया। अगर आप आश्रम में आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आश्रमाइट कौन है और आश्रमाइट कौन नहीं है। सब लोग नॉर्मल कपड़ों में, लोग पूछते हैं कई बार, मुझसे पूछा है कि भाई यहाँ आश्रमाइट कौन है, मैंने कहा एक तो सामने खड़ा है, बाकी आप बोलो। तो पूछते हैं नहीं नहीं कुछ तो होगा, मैंने कहा अंदर पहचान है, ढूंढ सको तो ढूंढो, नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो अब ये क्या हुआ, ये बाहर की चीजें बदलती हैं और इट्स ओके। ये नहीं कि ये करो या वो करो, ये पहचान नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो छल होता है। यहाँ हम देखते हैं कई बार वो गणेश जी के मंदिर पे वो नारियल तोड़ने, सारे के सारे वो जो चोरी चकारी करने वाले मिनिस्टर हैं ये सब जाते हैं, और कई बार हम लोग इससे कितना धोखा खाते हैं कि अरे वो मिनिस्टर जी वहाँ गए थे, उन्होंने ये उद्घाटन किया था। ये धोखा है, ये दृष्टि भ्रम है, ये धर्म नहीं है, इसका एक बाहरी रूप है। तो फिर धर्म क्या है? अब हम आते हैं अंदर में। अब इसमें भी एक सत्य छिपा हो सकता है बिफोर वी गो इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल हाय और नमस्ते, मुझे ये नमस्ते बड़ा अच्छा लगता है। आश्रम का ये तौर तरीका है कि हम हृदय के ऊपर हाथ रख के बहुत लोग कर देते हैं, तो ये क्या है, ये एक बड़ा सुंदर एक्सप्रेशन है। यानी अगर ये हमारे आंतरिक सत्य का एक्सप्रेशन है तो बहुत सुंदर है, और अगर ये आंतरिक सत्य का एक्सप्रेशन नहीं है तो वो एक धोखा है। भोजन है, भोजन के पहले हम लोग ऑफर करते हैं, तो आपने उसको ऑफर करने के लिए बाकायदा 3 बार वो खाया, लेकिन आपके अंदर लार भी टपक रही है, आपने कुछ नहीं, और या आपने अंदर ही अंदर एक मेरी बड़ी सुंदर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ था किसी के साथ, कोई आश्रम के ही योगी थे और बाद में पता चला और भी लोग इस तरह के हुए हैं, तो वो अपना कुछ मैं अपने सिखाए हुए तरीके से थोड़ी देर प्रणाम करके जो भी अंदर में प्रार्थना है करके खाता हूँ, खाता था, तो वो अपना आए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मैं सोचूं अब वो विचार पढ़ लेते थे, तो उन्होंने कहा यही सोच रहे हो ना, तो मैंने कहा हाँ कहा अरे हरेक ग्रास भगवान को देना है, हरेक और भगवान को देना है। मैंने कहा ये तो हेल्थ का नुस्खा हो गया, क्योंकि आप कॉन्शियसली खाएंगे अगर हरेक ग्रास को, इवन अगर आप ऑफर नहीं भी कर रहे हैं केवल कॉन्शियसली खा रहे हैं, तो देखिए आपकी कितनी समस्याएं दूर होंगी। आपने ऑफर किया 10 मिनट में जल्दी जल्दी खा लिया, तो हमने वास्तव में, या आपने छटकारा लेके खाया तो वास्तव में हमने किसको ऑफर किया, हमने बेली गॉड को ऑफर किया। भगवान से तो हमने परमिशन ले ली कि अब हम ये सारा भोजन एक अंदर हमारे जिन्न बैठा उसको दे रहे हैं, आपको हमने कह दिया है बाकी संभाल लेना। तो देखिए इसमें जो अंदर की चीज है सत्य है वो नए नए रूप से, अब अंदर का सत्य क्या है, अंदर का सत्य बड़ा सिंपल है, अंदर के सत्य में अंदर की भूमि पर हम आ जाते हैं। अब बाहर के एक्शंस उसके पीछे अंदर की भूमि, अंदर की भूमि क्या है, विचारों की भूमि, भावनाओं की भूमि, संकल्प की भूमि। और ये हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से तुम्हारे लिए क्या कर रहा है उससे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है कि वो अंदर से वो क्या कर रहा है। एक कोई व्यक्ति बहुत टाई सूट में आकर के आपके लिए दरवाजा खोल रहा है और आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और एक प्रोडक्ट बेच के जा रहा है, और एक व्यक्ति है जो आपको सच कह रहा है जो भी चीजें हैं, हो सकता है कि कभी वो आपको सच कहे बड़े कर्कश स्वर में भी कह दे। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, नहीं है तो होना चाहिए। मैं तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको कहता हूं माँ काली साक्षात हो गई है, मेरे लाइफ में भी है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कह दे तुम मूर्ख हो। बाकी ठीक है, ये नहीं कि किसी के कहने से आप मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई चीज है जो मेरे अंदर ये क्या करते हैं, छिजिल करते हैं। तो आपकी जो मन की प्रतिक्रियाएं, मन के विचार, भावनाएं जो बाहर प्रकट नहीं होती, और मनुष्य ने इतना छल करना सीख लिया है कि धर्म का बाहरी रूप तो खत्म हो गया है, यही है धर्मस्य ग्लानि, जहां बाहरी रूप है लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। जबकि आप जब अंदर से, और इसके मैं अनेकों उदाहरण ले सकता हूं, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था और हम हनुमान जी के मंदिर, एक पास में मंदिर था, वहां जाके लोग वो हनुमान जी को पिंजड़े के अंदर रखा हुआ था, पिंजड़ा मतलब वो बार वाला, अब जो भी उनका कारण था, कारण क्या था कि चढ़ावा ना ले जाएं लोग। और कैसे लोग चढ़ावा देते थे, पैसे निकाल करके ऐसे फेंकते थे, या आप दान पेटी में 5 रुपये डाल रहे हो, 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहे हो, ये क्या है, ये धर्म है? तो धर्म क्या है, अंदर में हमारे विचार, भगवान को क्या पसंद आएगा, कभी हम उनसे भी पूछ लें कि आपको हमारा ये 10 पैसे डालना पसंद है। एक बार एक महिला हैं, वो क्लियर वॉइंट हैं, वो भगवान की वाणी भी कई बार सुन लेती हैं, तो मुझे बता रही थी अपना अनुभव कि वो श्री अरविंद के कक्ष में गई, तो वो कुछ उन्होंने पैसे रखे थे ऑफर करने के लिए, अब वो पर्स खोल के ढूंढ रही, उनको मिल ही नहीं रहे, वो बड़ी परेशान हो रही है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, वो ढूंढ रही है श्री अरविंद के कक्ष में जाके। तो उनको वाणी सुनाई दी श्री अरविंद की, यू कैन ऑफर योर मनी एनी वेयर, हियर यू ऑफर योर सेल्फ। तुम ये पैसे, ये तो तुम कहीं भी ऑफर कर सकती हो, नीचे कर सकती हो, कहीं भी है, हुंडी है, लेकिन यहां तो तुम स्वयं को मुझे दो। अब ये कठिन होता है, और वास्तव में धर्म का ये डीपेस्ट सेल्फ तो यही है, कौन से विचार हैं, कौन सी भावनाएं हैं जो हमको भगवान से जोड़ते हैं, हमारे ही सत्य से जोड़ते हैं, वहीं से स्वधर्म स्वभाव आता है। स्वधर्म और स्वभाव क्या है, वो जो हमारे हृदय के गहरे सत्य से निकलता है। अब कहानी इसकी बड़ी सुंदर, कि जब भीमसेन से पूछा माता कुंती ने, बेटा तूने मेरे 100 बच्चे मार दिए, एक तो छोड़ देता, भीम का उत्तर है कि माता क्षमा करें, आपके 200 पुत्र होते तो मैं 200 को भी मार देता। अब वो क्या कह रहे हैं, ये मेरा स्वधर्म है, मैं अन्याय नहीं देख सकता हूं, मेरे अंदर एक क्षत्रिय भाव है, और जो अन्याय करेगा जो भी हो, मेरा अपना क्यों ना हो, उनके हृदय में एक बार भी डिलेमा नहीं आता है कि युद्ध होने वाला है मैं करूं या ना करूं। अर्जुन सात्विक नेचर का है, उसके अंदर आता है मैं करूं या ना करूं, और श्री कृष्ण बताते हैं वहां स्वभाव और स्वधर्म की बात होती है, कि अंदर के सत्य को अभिव्यक्त करना, उसको प्रकट करना जीवन में, बाहरी मास्क आवरण पहन करके नहीं, बिना आवरण के, वो भी एक धर्म का बड़ा सुंदर स्वरूप है। लेकिन वो हम लोग अभी भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग अपना जीवन जीते ही नहीं है। और ये एक बड़ी अद्भुत बात है, अगर हम बच्चों को आज के देखें तो उनके अंदर एक चीज जिसका बहुत बड़ा अभाव है, नॉट मैनर्स बट हिपोक्रेसी, बड़ी अच्छी बात है, उनको पसंद नहीं है। आप उनसे जबरदस्ती ना पांव छुपवा सकते हो, ना जबरदस्ती किसी की रिस्पेक्ट करवा सकते हो, पर जहां उनको करना है वो करेंगे, हृदय से करेंगे, ये अपने आप हो रहा है। तो धर्म के मूल स्रोत में अगर हम जाएं तो वे विचार, वे भावनाएं, वे संकल्प जो हमें विशालता की ओर, सत्य की ओर, हमारे ही सत्य की ओर और सृष्टि के सत्य की ओर, एक शब्द में कहें तो ईश्वर से जोड़ते हैं, वो बाहर से देखने में कुछ भी हो सकते हैं। और इसको बड़े सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने अपनी वाणी से माने अद्भुत प्रकट किया है। जब मीराबाई उनसे पूछती हैं कि मेरा क्या धर्म है, मेरे घर में सब कह रहे हैं कि मुझे पूजा करनी चाहिए, उसमें वो बलि भी चढ़ती है, वो क्षत्रिय हैं तो इट्स ए रूटीन थिंग। कहते हैं मुझे तो कृष्ण से प्यार है, मैं क्या करूं। तुलसीदास, हम सब ने सुना होगा शायद, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़ ये तज कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, बलि गुरु त्यजो विभीषण बंधु भरत महातारी। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज तक लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। कहावत यूज करते हैं, घर का भेदी लंका ढाए फॉर विभीषण। विभीषण सत्य के साथ था, अगर वो भाई के साथ जुड़ा होता तो ही वुड हैव बीन लाइक कुंभकर्ण। ये सच है कि विभीषण ने अपने भाई की बात नहीं सुनी, भाई की मृत्यु का कारण बना। लेकिन यह भी सच है कि यदि विभीषण नहीं होता, यानी विभीषण इज वन ऑफ द फाइव इमॉर्टल्स, ऐसे ही थोड़ी, यही चीज हम मंदोदरी के साथ देखते हैं, यही चीज हम तारा के साथ देखते हैं। तारा ने कभी भी जो गलत, तारा मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सुग्रीव की पत्नी, और जब बाली की पत्नी, और जब बाली की डेथ होती है तो वो अपने पुत्र को कहती है कि मैं समझ सकती हूं तेरा पिता के लिए शोक, लेकिन जो श्री राम ने कहा किया है वो उचित किया है, तू जा और उनके शरण में जा। शी इज वन ऑफ द पांच प्रातः स्मरणीय में से तारा है, प्रातः स्मरणीय में से मंदोदरी हैं, जिन्होंने रहस्य बताया था रावण की मृत्यु का। आप सोचिए कितनी गुड़ है, रावण की मृत्यु का रहस्य वो बताती हैं। कुंभक वाला नहीं, वो यज्ञ कर रहा है तो वो कहती है, और रावण वो कहती भी है, उनकी जो लास्ट में जो स्पीच है, जब स्पीच इज ए रॉन्ग वे टू पुट इट, जब वो अपने उद्गार प्रकट करती हैं रावण की जब मर चुका है। तो अगर हम इसके सूक्ष्मता में जाएं तो देखा जाता है ये बाहरी बात नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही, बलि गुरु त्यजो, कितनी बड़ी बात है ये। विभीषण बंधु भरत महातारी, भरत ने धर्म किया या धर्म किया, कौन है, किसकी हिम्मत है जो कहे भरत ने या धर्म किया, जिनको स्वयं श्री राम ने अपने हृदय से लगाकर इतना अनुग्रहित किया। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंतरिक एक स्वरूप प्रकट हो रहा है। भरत सत्य के साथ खड़े हैं, बलि सत्य के साथ खड़े हैं, सारे के सारे स्वयं श्री राम सत्य के साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण, जिनकी बात हम लोग कई बार नहीं समझ पाते कि इन्होंने जरासंध को ऐसे, जरासंध को तो खैर उसमें भी उन्होंने हिंट दिया, दुर्योधन में भी उन्होंने हिंट दिया, और जयद्रथ की वध में तो उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि इन्होंने धर्म किया कि अधर्म किया। श्री कृष्ण सत्य के साथ खड़े हैं, और सत्य क्या है अपनी अनफोल्डिंग में, यानी धर्म एक बाहरी कर्म कांड नहीं है कि डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है। एक बार एक मुस्लिम मित्र से बात हुई थी, कहा भैया ये भगवान पनिश कर देंगे, ये कर देंगे अगर तुम अचानक 5 बजे बैठ के नमाज नहीं पढ़ोगे तो, ये क्या है। तो कहते हाँ भगवान पनिश कर देंगे। अब ये विचारधारा है कि भगवान ऐसी बात पर पनिश कर देंगे, आप कहाँ हैं, गाड़ी में हैं, कहीं हैं, ट्रैफिक है, न्यूसेंस, वो अलग बात है कि जीवन आपको ले जाता है आगे, ठीक है। आप अंदर में स्मरण, विवेकानंद जी ने इसको कितने सुंदर ढंग से कहा रोज हमें स्नान करना चाहिए, भौतिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, लेकिन यदि भौतिक रूप से समय ना मिले तो आपको आत्मा को स्नान देना चाहिए। अब देखिए कैसे लोग, एक सन्यासी जी जिन जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग रेवा जा रहे थे, अब वो आगे साथ में टॉक वॉक सुनी थी, मोहन भाई भी थे हमारे साथ में, अब वो बड़े परेशान हो रहे हैं। तो एज ए साइकेट्रिस्ट में तो नजर गई, मैंने कहा स्वामी जी क्या आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कहते नहीं नहीं वो मुझे स्नान करना है। तो मैंने कहा नहीं, उन्हें कहा पूजा करनी है, मैंने कहा पूजा करनी कर लीजिए, हम चले जाएं कहीं, आप पूजा दिखाते, बोले नहीं नहीं पूजा के लिए मुझे स्नान करना है। तो मैंने कहा बाथरूम में स्नान कर लीजिए, हम खड़े हो जाएंगे बाहर, आपको ग्लास व्लास भी, नहीं नहीं मुझे स्वच्छ पानी से स्नान करना है। मैंने कहा स्वच्छ पानी कहाँ मिलेगा आपको, गंगोत्री जाएंगे हमें। आई वॉज इन जोवियल मूड। ट्रेन कहीं रुकी, नीचे उतरे, आधे घंटे हम लोग चेन के पास खड़े हैं कि भाई स्वामी जी आ जाए नहीं तो हम चेन खींचेंगे, फिर वो बैठे। तो बाद में मैंने कहा कि क्या सच में भगवान इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? यानी अब देखिए आप, एक बाहरी रूप है और एक इसका आंतरिक रूप है। आंतरिक रूप है जो स्वामी विवेकानंद कह देते हैं कि भाई कर लो स्नान, करना अच्छी बात है, आपके शरीर को स्वच्छ रखो। और भी कई कारण हैं इसके, गुह्य चीज़ें भी हैं। लेकिन यदि तुम नहीं कर पाते हो, जैसे अब फ्लाइट पर, अब मैं तो अमेरिका जाता हूँ, जितनी बार जाता हूँ तो स्नान वान कहाँ करूँगा, तो क्या मैं भगवान का ध्यान नहीं करूँगा, माता जी का नाम स्मरण नहीं करूँगा, वो तो माता जी का काम नहीं करूँगा। तो ये जो चीज़ है वो हमें समझनी चाहिए कि अंदर में हमारे विचार हमको भगवान से जोड़ दें, भावनाएं भगवान से जोड़ दें, या हमको वो हमारे स्वार्थ से जोड़ दी हैं। एक ही पाप है संसार में, वो है स्वार्थ, और इतना यूनिवर्सल है। शेरविंद कहते हैं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। एक जगह कहते हैं सेल्फिशनेस एंड मीननेस आर द ओनली टू सिंस दैट आई फाइंड डिफिकल्ट टू पार्डन। शेरविंद कह रहे हैं बट दे आर सो यूनिवर्सल दैट इवन दे मस्ट बी पार्डन। और फिर एक ही चीज को कहते हैं अधम कृत्य, वो है क्रुएल्टी, क्रूरता। अब क्रूरता और हिंसा अहिंसा, ये देखिए कैसे बाहरी एक्ट में अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये अर्जुन ने तो मारा है इनको, ये क्रुएल्टी नहीं है। नहीं, क्रुएल्टी एक अंदर की अवस्था है, हिंसा अहिंसा एक अंदर की स्थिति है। आप किसी रक्षा में कोई चीज कर रहे हो या धर्म के लिए, न्याय के लिए, न्याय संगत युद्ध में जब आप वध कर रहे हो तो वो क्रुएल्टी नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, उद्धार करते हैं। लेकिन अगर आप अपने निज के लाभ के लिए कोई चीज कर रहे हो तो वो आप क्रुएल्टी कर रहे हो, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि आप मारो, वाणी से कष्ट पहुंचाना, भावों से कई बार कष्ट पहुंचाना। तो एक इसका आंतरिक भूमि पर, अब आंतरिक भूमि पर समस्या ये होती कि इसके कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो ये कि रूल बड़ा सिंपल है, कैसे पता चलेगा, कोई किताब है, किताब में तो लिख दिया अहिंसा परमो धर्म, तो अब क्या हुआ, अब आप बोलोगे मैं चींटी को भी नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप पांव लेके जमीन पर चलते हैं तो ना जाने कितने जीव आपके जाने अनजाने पांव के नीचे आते हैं, जब आप श्वास लेते हैं तो कितने बैक्टीरिया वायरस समाप्त होते हैं। तो एक इसकी कहानी है कि जब वो एक नागस सन्यासी थे, जब दिल्ली आश्रम में आए थे तो वो पांव जमीन पर नहीं रखते थे, तो वो नीचे एक बड़ा सा वो पता नहीं ताड़ का पत्ता और किस चीज़ का, ताड़ का नहीं, वो एक पत्ता होता है पीपल टाइप का बड़ा, तो उस पर वो पांव रख के आते थे। तो उनकी टॉक वगैरह हो गई तो सुरेंद्रनाथ जौहर जो तारादी के पिता थे, उन्होंने लास्ट में कहा आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन एक बस, यू आर टू अटैच टू योर डिटैचमेंट। चुप। कि भाई आप पांव नहीं रख रहे हो, ये आपने बना रखा है, आप ऐसे कि भाई मैं ये खाऊंगा, तो ये तो यू कैन नॉट अवॉइड, ये सृष्टि के अंदर ये प्रोसेस है। हाँ, सचेतन रूप से किसी के प्रति हमारे अंदर हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए बाहर से अहिंसा गांधी जी वाली हो गई, क्या वो धर्म कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, घोर अधर्म कर रहे थे, उनके कारण हमारे कितने लोग तो फांसी पर चढ़े, पर वो बाहर से अपने हाथ क्लीन रख रहे थे, मैंने हिंसा नहीं की। आपकी अहिंसा के कारण, आज तो कलकत्ते की बात, बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में नरसंहार हुआ, नोआखाली में लोगों का मर्डर हुए, मर्डर इज अ रॉन्ग वर्ड, जेनोसाइड हुआ, जिसकी आज तक हम, तो क्या गांधी जी की अहिंसा बहुत अच्छी अहिंसा थी? क्या श्री कृष्ण ने यह कहा होता? श्री कृष्ण ने अपना एक भेज दिया था उस समय, किसको भेजा था? अपने ही नाम रूप गोपाल पाठा। हु इज द हीरो? कौन था यंत्र? गांधी जी, जिन्होंने मना किया कि नहीं नहीं कोई प्रतिकार नहीं करेगा, या गोपाल श्री कृष्ण का ही पाठा, बच्चे को भी कई बार कहते हैं श्री कृष्ण के अंश, ना जाने कहां से, और वो कसाई है लेकिन उस कसाई के अंदर क्या चीज व्याप्त हो गई। तो यहां हम देखते हैं कि मूलभूत से हिंसा, हिंसा एक बाहर की चीज नहीं है, हिंसा का भाव यानी आप किसी को जानबूझकर क्रूरता करते हो या उसको नष्ट करना चाहते हो, विनाश करना चाहते हो, ये हिंसा है। लेकिन कभी कभी एक बृहत्तर सत्य के लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ता है, तो वो अहिंसा है, क्योंकि अल्टीमेटली अंदर में अहिंसा, हिंसा का भाव नहीं है, सत्य की सेवा का भाव है। तो आप देखिए ये पूरा हम देखते हैं कि अंदर की भूमि पर कौन सी चीज है। ये नहीं कि आपको हर समय तलवार उठा के घूमना चाहिए, कृपाण रख के चलना चाहिए, ये बात नहीं है। बात ये कि ये अंदर के भाव हैं, कौन से भाव हमारे अंदर स्वार्थ से उत्पन्न होते हैं और कौन से भाव हमारे अंदर परमार्थ या कम से कम निस्वार्थ भाव से, अगर आप आत्मरक्षा ही नहीं किसी अन्य की रक्षा के लिए अगर आप शस्त्र उठाते हैं तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आप किसी को लूटने के लिए शस्त्र उठाते हैं, कृत्य वही है लेकिन अंदर में आपका जो भाव है और जो विचार है वो अलग है। तो हिंसा अहिंसा इसी प्रकार से हर चीज के साथ है। अब ये हुई अंदर की गति। तो फिर अब होता है कि ठीक है ये तो अब पता कैसे चलेगा, पता बड़ा स्पष्ट रूप से चलता है, ये रिवार्ड पनिशमेंट बाहर से नहीं चाहिए। जो भी कृत्य हम संकुचित भाव से करते हैं, इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है, ये यू कैन मेक आउट कि ये झूठ बोल रहा है, एंड वीमेन कैन डेफिनेटली मेक आउट इफ द मैन इज लाइंग, वो चेहरा आपका ट्विस्ट होगा और वो एक उसका प्रभाव पड़ता है। आप जब मीननेस लाई इसमें जब जीवन जीते हैं, अंदर में क्या होता है, भय आता है, क्यों, क्योंकि अगर मेरा झूठ अगर पकड़ा गया तो उसके लिए कोई कार्मिक लॉ की जरूरत नहीं है। अंदर में अवसाद भी आता है क्योंकि आपको कोई चीज मिल गई, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई चीज लगती है कि शायद ये अनुचित है। तो अब ये रिवार्ड और पनिशमेंट जो लिखे हैं धर्म में, ये कहाँ है, ये अंदर है। जब कोई भी कर्म, यही बात श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जब कोई कर्म हम तमोगुण में होके करते हैं, चाहे वो रोज की रिलीजियस एक्टिविटीज हो, वो तमोगुण की वृद्धि करता है, वो डिल्यूजन को, मोह लाता है। मोह इस प्रकार का होता है कि किसी किसी को इसी बात का अभिमान हो जाता है कि मैं रोज पूजा कर रहा हूं 50 सालों से, मैं रोज आश्रम में रहता हूं 50 सालों से। ये आपने तामसिक जीवन अगर जिएंगे तो उसका ये परिणाम होगा कि वो डिल्यूजन आएगा अंदर में, क्लैरिटी नहीं आएगी। इससे अधिक और क्या आपको इसका रिजल्ट चाहिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। और अगर हम राजसिक जीवन जीते हैं, राजसिक भाव से विक्ट्री और डिफीट के लिए, तो हमें सुख दुख ये परिणाम मिलेंगे, हर सुख के साथ दुख की छाया होगी। और अगर हम सात्विक भाव से जीते हैं, सात्विक भाव में पहली बार हम देखते हैं कि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो धर्म के बारे में बताया जाता है वास्तव में, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। तो जब हम कोई चीज उचित करते हैं, एथिकली उचित है, मॉरली उचित है, अगेन ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें जो लगता है, अब ये चीजें बदलती हैं लेकिन कम से कम मुझे जो एथिकली लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो आप देखेंगे जैसे ही हम वो चीज करते हैं कृत्य जो एथिकली उचित है, तो अपने आप अंदर में एक शुरू में स्ट्रगल हो सकती है लेकिन बाद में एक शांति होती है, बाद में करने के बाद लगता है अच्छा हुआ हमने ये चुनाव किया। और अगर कोई ऐसी चीज करते हैं जो एथिकली उचित नहीं है, तो अपने आप हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज सिकुड़ती है, भगवान का नेचुरल जॉय सिकुड़ता है। फिर हम बाहर से चीजों को, उस खुशी को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो नेचुरल जॉय है उसका क्षय हो गया, क्षीण हो गई, तो सुख दुख छाया लेकर के हमारे साथ चलते हैं। और जब हम सात्विक भाव से करते हैं तो हमारे अंदर कोई चीज खुलती है। उस सात्विक भाव के बाद हम धर्म के सबसे गहरे रूप के प्रति या सत्य के प्रति खुलते हैं। और वो क्या रूप है, भगवद गीता में बड़े सुंदर ढंग से अंत में धर्म का अल्टीमेट रूप क्या है, और वो ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा, मन मना भव मद भक्ता मद्या जी मा नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम रजा। और श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचा। यहाँ पर एक दो कहानियाँ हैं बड़ी सुंदर, तो दो तीन कहानियाँ हैं इसके बारे में कि जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन ही धर्म है। एक बड़ी सुंदर कहानी है जब ऋषभ चंद जी आए थे तो वो तो जैन थे। अब श्री अरविंद तो ये मेंटल कंसेप्शंस तोड़ते थे, तो बड़ी सुंदर किताब लिखी उन्होंने श्री अरविंद हिज लाइफ यूनिक। तो जब वो आए तो बड़े खुशी खुशी उन्हें चिट्ठी लिखी श्री अरविंद को कि जो माँ देंगी काम मैं करूँगा, कितना सुंदर, बहुत ग्रैटिट्यूड से भरी कृतज्ञता से। माँ ने उनको पहला चिट भेजी नोट कि जो फर्नीचर डिपार्टमेंट में उनको काम मिला था, कहा इसमें जो खटमल हैं उनको मारना है। अब तो उनको प्रॉब्लम हो गई, माँ ने क्या काम दे दिया। देखिए भगवान की लीला। तो उन्होंने पत्र, वो वाला पत्र जो ग्रैटिट्यूड का था, किनारे रख दिया। उनकी बेटी है वो, यहीं पर वो बता रही थी। फिर उन्होंने एक और पत्र लिखा, कहा क्षमा करें गुरुदेव, माँ ने मुझे काम दिया है। कदाचित उन्हें जैन धर्म के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो भारत से नहीं है, फ्रांस से हैं, तो आप कृपया उनको आप बता दीजिएगा कि मैं खटमल नहीं मार सकता। तो श्री अरविंद का पत्र आया, जो भी काम माँ देती हैं उसको तुम भगवान की सेवा मान के करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसको अलग ढंग से समझाया था। जब उससे कोई मिलने गया तो उसके मन में ही विचार चलते थे, अरे शाम को बैठते हैं, खटमल काटेंगे तो, मच्छर काटेंगे तो क्या होगा। उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण परमहंस मच्छर मार रहे हैं, तो वो हंस के उन्होंने कहा यही सोच रहा था। तब देखिए ये एक अलग भूमि है जहां गुरु के वाणी से बढ़कर, आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और श्री अरविंद माता जी के तो अनेकों उदाहरण है। रविंद्र जी आए थे, वो तो अंडा टच नहीं करेंगे। तो जब अंडा वो देते थे, अंडा सर्विस में, तो ऐसे देते थे कि जैसे पता नहीं छूते ही पाप लग रहा है। तो किसी ने पूछा, कहते क्या करूं, माँ ने मुझे ये काम दिया है। अब माँ क्यों ये काम देती थी, उनको सब पता था। क्योंकि अगर हम किसी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ेंगे तो पूर्ण सत्य नहीं आएगा। यानी एक समय है जब इन चीजों का औचित्य है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ तो भगवान के समर्पण में है पूरी तरह की। जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। अब देखिए सन्यासी भी कैसे इससे डेविएट करता है, यही अंतर देखिए। एक सन्यासी अपना सब कुछ बाहर से त्याग कर देता है, कठोर जीवन जी रहा है। मीराबाई ने क्या उत्तर दिया था? मीराबाई तो कहती है कि सांवरे के रंग राची, एक जगह कहती है करना फकीरी फिर क्या दिल लगीरी, सदा मगन में रहना जी, कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केश। एक एक पल वो पलंग पे मैं सो जाऊंगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भूई पर लौट जाऊंगी। तो ये समता के मार्ग से हम उस उच्चतम धर्म की ओर जाते हैं जहां हम केवल और केवल भगवान की ओर अपने सारे हमारी विचारधाराएं ये सब समर्पण करके। एक जगह माँ बताती हैं कि एक कोई मिला था उनको, फ्रांस की बात है या जापान की बात है, तो जापान की बात है, तो उसने कहा मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, केवल एक चीज को छोड़ के कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपने राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। तो माता जी कहती है, दो कहानियां मैं मिला रहा हूं जस्ट, तो माँ कहती है अगर भगवान ने क्या पता तुम्हें यही कह दिया तो घबरा गया। एक व्यक्ति को माँ ने अनुभव दे दिया था अनंतता का सीमित में, वो भाग गया। जापानी व्यक्ति कहता है ये मुझे क्या हो गया, कहा क्यों, कहते इसके बाद समस्या ये हुई कि उस समय मैं जो ये सोचता था कि मेरा राष्ट्र ही सर्वोपरि है, मेरे तो ये एकदम समाप्त हो गया, ईश्वर सर्वोपरि है। अब देखिए लगने सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या ऐसा ही सत्य नहीं हुआ था जब हिटलर के लोगों ने, अगर वो सोचिए ये सोचते राष्ट्र ही मेरा सर्वोपरि है, सोच ही था उन्होंने। तो ये सच है कि राष्ट्र धर्म बहुत उत्तम है, मानव धर्म बहुत उत्तम है, लेकिन एक समय आता है जब हम केवल ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकं शरणं व्रज, जैसा तुम चाहो कहो तो मुतियन मांग जड़ावा, तुम कहो तो भगवा पहनू, तुम कहो तो श्वेत पहनू, तुम कहो तो रंग बिरंगे पहनू, तुम कहो तो नीला लाल हरा सब पहनू, क्योंकि सारे रंग तुम्हारे हैं। तो धर्म का जो अल्टीमेट स्वरूप है जो हम गीता में देखने को मिलता है, जहां धर्म एक व्हीकल है जो हमको अपने कर्म भावनाएं विचार इन सब के माध्यम से ले जाता है वहां पर जहां धर्म का स्रोत है, और वहां पहुंच के ये धर्म का वो खत्म हो जाता है। और इसके मैं दो छोटे एग्जाम्पल से समाप्त करूंगा। एक तो आश्रम का, माने किसी को कहा कि ब्रेड चाहिए मुझे बेकरी से, तो व्यक्ति ब्रेड लाने गया बेकरी में, तो बेकरी का टाइम होता था 5 बजे बंद हो जाती थी बेकरी, ये सज्जन पहुंचे 5:30 बजे, तो उन्हें कहा बेकरी सॉरी बेकरी का तो टाइम बंद हो गया है, तो उन्हें कहा माँ कह रही या कोई भी कह रहा है, माँ ने मुझे टाइम दिया है 5 बजे का, कहते माँ को चाहिए ब्रेड, तो कहता है एक कंसेशन किया उसने, लिखवा के ले आओ। ये कहानी रियल स्टोरी, अब मूर्खता की हद। और एक इसी तरह की कहानियां है जिसमें कि किस तरह से हम कभी कभी बाहर की चीज से जुड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसके पूर्ण सत्य को, अंदर के सत्य को भूल जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त सी बहुत बड़ा विषय है, एंड वी कैन स्टॉप विद दैट, पर अगर कोई प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक। इसका बहुत ही एक ओवरव्यू है धर्म की गहराई, अंत में जब हम अगर भगवान तक पहुंच गए तो वहाँ धर्म ने अपना काम कर दिया, वहाँ नहीं पहुँचे तो हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और भगवान तक पहुँचने के पहले जो लक्षण आएगा कि हम सच में अगर जीवन जी रहे हैं जो धर्म से जुड़ा हुआ जीवन है, तो हृदय के अंदर आनंद प्रसन्नता शांति रहेगी। यदि ये चीज़ें नहीं हैं, बाहर के सारे काम कर रहे हैं लेकिन अंदर में ये विशालता नहीं आई है, अंत में वो छोटी सी शंकराचार्य जी की कहानी है कि जब वो अपना जा रहे हैं स्नान ध्यान करके, तो रास्ते में उनको अचानक शिव जी देख लेते हैं कि ये है तो मेरा अंश लेकिन पूरी तरह ये अभी समझा नहीं है धर्म के मूल को, तो एक चांडाल का रूप धर के आते हैं कुत्तों के साथ। तो जैसे ही शंकराचार्य देखते हैं कहते हैं नहीं नहीं दूर हट, मेरे पास मत आना। अब वो तो शिव जी हैं, कुत्ते भी हैं साथ में, छू देते हैं, ये भागे भागे जाते हैं स्नान करके आते हैं। तब उनको दर्शन होता है, कहते हैं ये कैसा तूने पहचाना नहीं, तो वो स्वयं शिव जी, यानी वो एक अल्टीमेट रूप है धर्म का, जहाँ हम हर चीज में भगवान और भगवान को हर चीज के अंदर देखने लगते हैं। धर्म हमको वहाँ ले जाता है, वहाँ ये सारे जो सीमाएं हैं तोड़, धर्म हमें एक ऐसी परिधि में बांधता है जिसका प्रयोजन है सब परिधियों के पार चले जाना। धर्म वो सीमाएं हैं जो हमको असीम तक ले जाती हैं, धर्म वह जीवन है जो हमको जीवन के आदि स्रोत से जोड़ देता है, धर्म वो जीवन शैली है कार्य प्रणाली है जो हमको सत्य की ओर ले जाती। कौन सा सत्य? जिसके बारे में कहा गया है, श्रुति कहती है अनपार्टीशन्ड, वो सत्य जो किसी सीमाओं में बंधा नहीं है, जो नित नवीन रूप में प्रतिक्षण अपने आप को प्रकट करता है। जय मां।
बहुत ही सुंदर शब्दों में कई कहानियों के माध्यम से, कई उदाहरणों के माध्यम से आपने धर्म के स्वरूप को समझाने की कोशिश की। बाहरी उसका लेवल क्या है जो हमेशा बदलता रहता है, उस आंतरिक स्थिति में जहाँ भावनाएं हैं विचार हैं उनकी आपने बात की, और अंत में पूरी तरह से ईश्वर को समर्पण कर देना जो है वो स्थिति है। एक बात और आपने बताई है कि बाप है मिट्टी रूप से वो है स्वाद, ये बहुत बड़ी बात आपने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मंच अब खुला है प्रश्नों के लिए, टिप्पणी के लिए, जो भी पूछना चाहें। प्रोफेसर दशोरा साहब
नमस्कार। डॉक्टर साहब का
आज का उद्बोधन
क्वेश्चन आंसर
कई तरह से अलग अलग संदर्भों को छूता हुआ प्रस्तुत किया डॉक्टर साहब ने. धर्म की जो दिशा बताई, ईश्वर और ईश्वर के प्रति हमारा टोटल समर्पण, इसमें निश्चित रूप से कहीं कोई विमति नहीं हो सकती. आपने भी अंत के अंदर जो भेड़ वाला एग्जाम्पल दिया, उससे मुझे प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसको भेड़ देनी चाहिए थी या नहीं.
निश्चित रूप से भगवान के आदेश से बढ़कर कुछ नहीं है, यही तो है सर्वधर्मान परित्यज. कुछ लोग बाहरी नियम
माता जी के नाम से अगर कोई व्यक्ति उनके पास गया तो ही शुड हैव गिवन द ब्रेड.
सब उनका है, बिल्कुल. नियम के परे, विधान के परे विधाता है स्वयं. यही तो गीता में, और अगर आप देखें महाभारत के युद्ध में बार बार यही बात आती है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, कि जब स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं और आपने उनमें, कम से कम अर्जुन ने उनमें परमेश्वर को देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात अलग है. और यही चीज लोग समझ नहीं पाते हैं, भूरी श्रवा क्या नहीं कहता है श्री कृष्ण को, युद्ध क्षेत्र में भी कहता है, अभी तक लोग कहते हैं. लेकिन जब गुरु या भगवान इनका आदेश होता है तो उस आदेश के पीछे एक विशेष प्रयोजन है, और उसमें धर्म का सच्चा स्वरूप है. धर्म वो है जो व्यक्ति को और समाज को उस ऊंचाइयां और गहराइयों में ले जा रहा है. अब देखिए आज क्या हो रहा है, लोगों ने वो किताब पढ़ करके उसको फॉलो करते हैं, पीपल ऑफ द बुक. लेकिन अगर आप अपने हृदय के अंदर, क्योंकि कई बार प्रश्न होता है अगर हमें बाहर से गुरु नहीं है या ईश्वर नहीं है कहने वाले तो कहाँ है, तो गीता ने इसको स्पष्ट कर दिया, आपके हृदय में उनका निवास है. आप उनको किसी बेड़ी में मत जकड़िए. श्री कृष्ण तो बचपन से ये दिखा रहे हैं कि किसी आप बंधन में उनको बांधेंगे उसको तोड़ेंगे. तो वो हमारे हृदय के अंदर पुरुषोत्तम का निवास है, और हमको ये सीखना है, ट्रेन करना अपने आप को कि हम कैसे उनकी वाणी को सुन सकें, उनकी प्रेरणा को अनुभव कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए.
इसमें छोटे छोटे और मेरे डाउट्स हैं.
हाँ,
आपने गोपाल पाठा का उदाहरण दिया.
हाँ,
आपने गोपाल पाठा का गोपाल नाम कृष्ण के नाम से ही संबद्ध करके एक धर्म का उन्होंने पालना की ये बताया, पर हमारे देश के श्रेष्ठतम लोगों ने उस काल के अंदर गोपाल पाठा की जितनी निंदा की, और आज भी इतिहास के पृष्ठों में अंकित है वो.
हाँ,
तो इस स्थिति को हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करें चीजों को, क्योंकि हम तो जो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं उनको भी सुनते हैं.
हाँ,
गोपाल पाठा ने जो किया, और निश्चित रूप से उसने जो किया उससे एक सनातन संस्कृति और जो जिसको हम धर्म कहते हैं उस दिशा के अंदर संरक्षण का एक बड़ा काम हुआ.
तो ऐसा है कि चूंकि जब भारत नया नया, वो कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है, रीबर्थ. भारत तो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक प्रकार का रीबर्थ हुआ, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी, शेरविंद भी एक जगह कहते हैं, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस बट इट इज नॉट येट फ्री. तो उसकी जो पुरानी मानसिकता है, जैसे योग में होता है कि हमारी पुरानी मानसिकता एक लंबे समय तक हमको जकड़ के रखती है, तो वह जो अचित मिथ्यात्व इसने उसको जकड़ा हुआ था. लीडर्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे थे. ये नियम है, जैसे जब कोई व्यक्ति योगनिष्ठ होता है, ये जो बात हो रही थी इनकी, ऋषभचंद जी की, तो एक भाग तो है जो अब आगे बढ़ेगा, लेकिन जो बाकी हमारी मानसिकता है वो सारी हमारे ऊपर प्रबल रूप से जकड़ी हुई थी. लेकिन अब वही देखिए कि आज कालांतर में 80 साल हो गए हैं लगभग, और 80 साल कुछ कम है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो अब आने वाले समय में, मेरी तो उनसे मुलाकात भी हुई थी, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी यहाँ आश्रम आए थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे उनके अंदर प्रेरणा आई. अब उनकी जो पिक्चर बंगाल फाइल्स इसी पर बनी. अब वही चीज़ जो एक समय जिसको लोग कहते थे कि ये बहुत बुरा हुआ, गलत काम है, इनफैक्ट दबा दिया गया. अब गोपाल पाठा का नाम कई लोगों ने सुना तक नहीं होगा. अब वो चीज सामने आ रही है, क्योंकि आप धर्म को नष्ट नहीं, आप दबा सकते हो कुछ समय के लिए. वो सत्य से निकला है, आप सत्य को नहीं नष्ट कर सकते. ये तो हमारा मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथापतितो देवयाना. आप कितना भी प्रयास कर लो, वो दब जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन बाहर आएगा. यही चीज हम महाभारत में देखते हैं. तो थोड़े समय के लिए भारत के अंदर वो एक फेस था जहां हम केवल एक बाहरी चीजों को, लेकिन अब सत्य का युग है, तो जितने भी सत्य हैं वो बाहर आएंगे, प्रकट होंगे.
एक विषय और है कि
फिलोसफी ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म आजकल पूरे विश्व के अंदर काफी प्रचलित हो रही है. आयन लैंड का जो फिलोसफी है जो वर्च्यूज इन सेल्फिशनेस को प्रोपोगेट करती है.
हाँ, आई हैव रेड हिज बुक, हर बुक्स रादर. और आपको पता ही होगा कि शी डाइड ए वेरी डिप्रेस्ड पर्सन. सो वो एक, खैर वो कोई किसी व्यक्ति का, आई हैव रेड अ बुक, वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड. सो वो एक कैपिटलिस्ट विचारधारा से लिखी गई किताबें हैं. अगेन, हर चीज का अपना सत्य है, कैपिटलिज्म का अपना सत्य है और कम्युनिज्म का अपना सत्य है. और वो अपील इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर, खासकर फाउंटेन हेड के अंदर, चूंकि आप आयन रैंड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक नए प्रकार के, जैसे आश्रम हम बनाते हैं, अब इज अ बिग वर्ड, बट ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जहाँ पे वो केवल परफेक्शन और क्वालिटी और किसी चीज़ के उसकी बात करते हैं. अब ये बड़ी सुंदर बात है, उस पुस्तक का जो मूल जो टचिंग पॉइंट है कि मनुष्य को परफेक्शन की ओर करना चाहिए, जो उसको उसके अंदर से जो एक लार्जर इंपल्स है, लेकिन वो अपने ये अपने आप में उस फिलॉसफी के अंदर पूरे अगर उसमें देखें तो दैट इज वेरी नाइस कि आपके अंदर तो बड़े अच्छे विचार हैं लेकिन बाहर में आप क्या कर रहे हो, नथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग. तो वो उसका गुणगान है, एक प्रकार के ग्रीक फिलॉसफी में भी इसका दर्शन मिलता है और दिस इज फाइन, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है और उससे और जो चीजें जुड़ी हुई हैं जिसको वो नहीं समझ पाई, क्योंकि फिर उसने एक पूरे कि भाई जो ये नीचे वाली बात हो गई कि जो कैपेबल हैं, जो नीचे की फिलॉसफी को एक नया रूप, कि जो कैपेबल हैं, जो समर्थ हैं, संसार उन्हीं का होना चाहिए. अब वो जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो भोग्य वसुंधरा, जिनके अंदर सामर्थ्य है, और सामर्थ्य उसके अंदर यही नहीं था कि फिजिकल सामर्थ्य, बट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीपर, तो संसार उन्हीं का होना चाहिए. तो अब ये एक लेवल पर, और वो आप इनेविटेबल मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, लेकिन जो बाकी हैं, हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबक की बात है, वहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं करती है कि जो समर्थ हैं, जो समृद्ध भी हैं और जो कैपेबल हैं, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए, साथ में ये भी जुड़ना चाहिए, मतलब वो इनकम्प्लीट ट्रूथ है. तो वास्तव में कैपिटलिज्म और, हाँ एक सेकेंड इसको कम्प्लीट कर लूँ, यानी हाँ किसका,
हम में से हर व्यक्ति का धर्म अलग होगा.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही कि एक ऐसी एनार्की की बात, जिसकी बात श्री अरविंद भी कहते हैं अल्टीमेट एज, जिसमें हर व्यक्ति का अपना धर्म होगा, इन द सेंस इवन हमारे नॉर्मल, अगर स्क्रिप्चर में हम जाएं, इवन मनुस्मृति में जाएं, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई बहुत मतलब अल्टीमेट स्क्रिप्चर है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि बच्चे का अलग धर्म है, स्त्री का अलग धर्म है, पति का अलग धर्म है, और बच्चे पिता का अलग धर्म है, और आयु के अनुरूप धर्म है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, ब्राह्मण का, तो ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ये भी एक बाहरी व्याख्या है. अल्टीमेट एनार्की क्या है कि आपके हृदय में जो सत्य है आप उसको प्रकट करेंगे, और उस ओर हम जा रहे हैं. अभी आप बच्चों को देखेंगे, यही मेरा हिंट था कि चिल्ड्रेन आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, जहां अंत में थ्रू दिस एनार्की, और अगर हम इसको अपने शास्त्रों से जोड़े तो सतयुग के समय भगवान किस रूप में आते हैं, वो यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं, वो हृदय के अंदर आपको प्रेरणा देते हैं. तो अब हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं नींव तो डाली इन लोगों ने. जब स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा बट शंकराचार्य डज नॉट से सो, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया बट आई विवेकानंद से सो. देखा जाए तो ये अजीब लगता है सुनने में, पर आपके हृदय में जो सत्य प्रेरणा है आप उसको अभिव्यक्त करिए, लेकिन ये जान लीजिए कि वो प्रेरणा सत्य है या स्वार्थ से आ रही है. और इस दिशा में बच्चे भी जा रहे हैं, संसार जा रहा है, समाज जा रहा है और जाएगा, ये इनेविटेबल प्रोसेस है, और तब तक के लिए बाहरी रूप है.
बहुत बहुत धन्यवाद.
जय मां
प्रोफेसर गोपीनाथ जी शर्मा.
हाँ,
अनम्यूट करिए कुछ. अनम्यूट करें साहब. नहीं तब तक और कोई. मनोज जी.
नहीं, भैया की वार्ता सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्याख्या की जो शीर्षक है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत साथ हुआ था.
और किसी को कुछ कहना है?
डॉक्टर आलोक जी.
हाँ कहिए. नमस्ते.
जो आपने दो एस्पेक्ट की बात करी, एक इंटरनल धर्म और एक एक्सटर्नल धर्म. एक्सटर्नल जो की,
हाँ,
जो है राइट, इंटरनल विच इज एटर्नल. एंड द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फिशनेस वी नो इंटरनली इट इज द ग्रेटेस्ट सिन बट देयर आर सर्कमस्टेंसेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड वेयर सेल्फिशनेस इज इंसेंटिवाइज्ड.
हां बिल्कुल.
हाउ डू वी बैलेंस दैट? उसको सामान्य
हमारे यहाँ तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, बड़ा मिसयूज्ड भी है. मैंने बचपन में जब पढ़ा था तो मेरा भी दिमाग घूम गया था. उसको कहा जाता है आपद धर्म. तो जब आप किसी ऐसी क्राइसिस की अवस्था में हैं तो वो अंडरस्टूड है कि बिकॉज, और इसको शेरविंद दिव्य जीवन में बड़े विस्तार से बताते हैं कि एक इंडिविजुअल का एफर्मेशन भी ईश्वरीय विधान है. तो एक आपको ये बोले कि मैं अब इसको मैं एक बड़े सिंपल ढंग से अगर प्रस्तुत करूं कि मैं अपना जीवन किसी के लिए कुर्बान कर दूंगा, तो चलो भाई तुमने कर दिया, एक अच्छा काम किया शायद, पता नहीं किसके लिए तुमने कुर्बान किया. यदि तुम जीवित रहते तो शायद तुमने बहुत बड़ा कार्य किया होता, भगवान के यंत्र बन करके कई लोगों को मार्ग दिखाया होता. आप इसीलिए देखें कि कभी भी कोई जो रियल सेंटली या वो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हाँ एमरजेंसी अगर कोई सिचुएशन है उसमें आपद धर्म बिल्कुल है, क्योंकि खुद को अगर आप जीवित रहेंगे तभी भगवान का कार्य करेंगे, तभी आगे की चीज कहेंगे. ये भी महाभारत में कई इसके उल्लेख आते हैं कि पहले आप अपने आप को, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर आपके अंदर जो भगवान का प्रयोजन है, हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल इट. तो निश्चित रूप से ऐसे, लेकिन वी शुड बी केयरफुल कि हम कहीं इसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं अपने कोई पूरा जीवन कि भाई हमको तो पहले बच्चों के लिए घर खड़ा करना है, बच्चों के लिए सारा करना है, इन द नेम कि भाई हमारे बच्चे हैं. तो वी शुड बी केयरफुल कि इसका मिसयूज बहुत है, पर है ऐसी सिचुएशन है जहां व्यक्ति आपद धर्म को निभाता है. वो फर्स्ट सेल्फ अफर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज ए फर्स्ट नेसेसिटी. यही चीज आयन रैंड भी एक तरह से बताती है, ये पार्ट उसका स्वधर्म का तो वहीं से वो भी आता है कि आप जो आपके अंदर जो उसका मूल है धर्म की जो प्रेरणा उठ रही है वो आवश्यक है.
और किसी को कुछ कहना हो?
विनोद जी कुछ बोल रहे थे.
जी मैं ये कह रहा था कि धार्मिक व्यक्ति के मौसारे पड़ रही थी लाती मन हो रहा मगर ऐसा मैंने धर्म की गहराई में आनंद का जैसे कि पायो जी मैंने नाम दर्शन पायो वैसा ही भाव आज पूरी वास्तव में
जय माँ जय माँ जय माँ.
कुछ कहना
चाहिए? गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, नोएडा में रहती हूँ, और मुझे ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो वैचारिक चिंतन मनन है वो शायद आत्मा की खुराक है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा अपने बातचीत में कि आंतरिक धर्म. तो हमको लगता है कि ये आंतरिक नेसेसिटी थी इस तरह से वार्ता सुनने की और आप लोगों ने चर्चा करने का मौका भी दिया, पूछने का मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत मुझे अच्छा लगा ये, मैं आपकी पुस्तकें भी मंगा करके पढ़ूंगी जो आपने शुरू में जब परिचय दिया था उस समय आपने जिक्र किया था, और तो उसमें भी दिया हुआ था जो हमारे पास लिंक आया था उसमें भी चर्चा हुई पुस्तक के बारे में, तो वो हम जरूर
पढ़ेंगे. जय
माँ जय. और किसी को कुछ कहना? तो मैं डॉक्टर साहब को एक बार पुनः आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद दूँ कि आप जब भी हम आपसे निवेदन करते हैं आप इस मंच पर पधारते हैं और अपनी वार्ता देते हैं, फिर भी जब कभी मैं आवश्यकता होगी मैं आपसे निवेदन करेंगे, आपका एक बार पुनः आभार. सभी सत्संग प्रेमी जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनका पुनः एक बार आभार. अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे नई वार्ता के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद.
प्रणाम
प्रणाम.